फिर अल्लाह ताला ने आगे बड़ी जबरदस्त आयत ये आ रही है, बड़ी प्यारी बात फरमाई है जिसने तो यानी गजब ही ढा दिया। ऐसी आयत है ये। और जब इंसान इतनी सारी बातें सुन के, जितना कुछ अभी तक पढ़ा है, इस सब सुन के भी नहीं मानता, उसको समझ नहीं आती, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कैफा। कैफा जो है ना, किस तरह, ये सवाल के लिए नहीं है। देखिए, एक हम पूछते ना, मैं अब पूछती हूँ, किस तरह आपने ये चीज बनाई, एक ये मैंने आपसे पूछा, तो अब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूं, और दूसरा मैं आपसे कहती हूँ किस तरह हो सकता है कि उसने ऐसा कहा हो, किस तरह हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये समझ रही हैं आप, ये सवाल नहीं है, इसमें क्या है, इजहारे ताज्जुब, हैरत है कि कैसे हो सकता है, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, ये माना है यहाँ पे, समझ आई बात, कैफा तकफुरुना बिल्लाही, तुम कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह का इनकार करो, तकफुरुना का मतलब क्या होता है, कुफर किसको कहते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको उसमें नहीं बताई बात पहले, ये कुफर छुपाने को कहते हैं, दबा देना कुफर है, छुपाना तो कंसील करना जिसको कहते हैं। अच्छा, आप ये कंसीलर लगाती है ना मेकअप में, तो उसमें क्या कंसीलर क्यों लगाते हैं, ये दाग धब्बे कोई हो वो छुप जाए, तो काफिर जो है ना कंसील करता है, क्या मतलब, अल्लाह ने जो उसको नियमतें दी हैं उनको छुपा देता है, यानी उनपे कहता ही नहीं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये नियमतें इनाम की हैं, मानता ही नहीं अल्लाह को, ठीक है, इसीलिए हम उसको भी काफिर कहेंगे जो अल्लाह का इनकार कर दे, और किसी नेमत की नाशुक्री जो है ना वो भी हम क्या कहते हैं, कुफरानी नेमत ना करो, तो क्या मतलब होता है, यानी नेमत की नाशुक्री ना करो, शुक्र का उलट क्या है, कुफर, ठीक है, शुक्र में क्या है, आप एडमिट करते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये दिया, लेकिन कुफर में क्या है, आप इनकार कर देते हैं। तो यहां पे क्या कहा कि किस तरह तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का, चाहे उसकी किसी नेमत का या उसकी जात का इनकार कर दी, नियमते पाके ही तुम अल्लाह को कुछ नहीं समझ रहे, अल्लाह की तरफ नहीं रुजू करते, उसके आगे नहीं झुकते, कैसे, वकुन तुम अमवातन, हालांकि तुम तो मुर्दा थे, कुछ याद तो करो, तुम क्या थे, कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा वजूद क्या था, ये जो हमारे नाम है ना जिनके पीछे हम इतना दौड़ते हैं, आ मेरा नाम वहां पे लिखा जाए, मुझे सर्टिफिकेट दे दो उस पे मेरा नाम लिखे, मुझे कोई शील्ड दे दे उस पे मेरा नाम लिखा हो, यहाँ पे तख्ती लगा दो इसके बाहर जिस पे मेरा नाम लिखा हो, बस मेरा नाम नहीं आया, नाम नाम नाम, हम ये नामों की रट लगाए रखते, एक दिन हमारा कोई नाम नहीं था, हम कुछ भी नहीं थे, 1900 में हम कहाँ थे, हम में से कोई भी नहीं था, 1800 में कहाँ थे, 1700 में कहाँ, लामतना ही जमाना गुजरा है, ये तो कोई डेट्स है ना जो कभी शुरू हुई, उससे पहले हम कहाँ थे, कहाँ थे हम, कोई वजूद नहीं था हमारा, हमारी कोई हस्ती नहीं थी, फिर फअहयाकुम, उसने जिंदगी दी तुमको, तुम्हें जिंदा किया, मैंने वो क्या बताया था कि तमाम नेमतों की बुनियाद क्या है, लास्ट टाइम आपको बताया था ना, सब नेमतों की बुनियाद क्या है, जिंदगी, ये जिंदगी दी गई आपको तो तभी आपके पास कुरान नेमत है, इस्लाम नेमत है, आंखें नेमत है, कान नेमत है, पानी नेमत है, जमीन नेमत, आसमान नेमत, ये सारी नेमतें बाद में आती हैं, सबसे पहले क्या नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, तखलीक किया, जिंदगी दी, जिंदगी एक नेमत है, इसकी नाकदरी भी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए खुदकुशी करना हराम है, ये अल्लाह ताला ने एक नेमत दी भी है, तो फअहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुमको, तुम तो कुछ थे ही नहीं, जिसने तुम्हें जिंदा किया, जिंदगी दी, तुम उसी को नहीं मानते, हैरत की बात है, तुम कैसे कह सकते हो ये, तुम कैसे ये सोच सकते हो कि तुम उसका इनकार करो, अल्लाह अकबर, इसलिए क्योंकि इंसान जितना कुछ भी पाले इस दुनिया में, जितनी नेमतें, जितने इनामात, जितनी उसके पास चीजें हैं, जितनी खुशियां हैं, जितना कुछ अचीव कर ले, वो सब इस जिंदगी पे डिपेंड करता है, और अगर ये जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं, यानी सबसे बड़ा एहसान फिर अल्लाह ताला का हमारे ऊपर क्या है? आपसे पूछा जाए तो कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ देगा, लेकिन सबसे बड़ा एहसान ये है कि हमें उसने तखलीक किया, हमें जिंदगी दी, हमें जिंदगी दी, हाँ, दुनिया में भेजा। और जिसका जितना बड़ा एहसान होता है उसका क्या होता है? हक भी उतना ही ज्यादा होता है ना। आप देख लें, माँ बाप का एहसान ज्यादा है, वो पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, तो उनका हक भी आपने देखा ना फिर ज्यादा होता है। इसी तरह और भी जिन जिसका एहसान ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा हो जाता है। जिसका सबसे बड़ा एहसान उसको ही तुम भूल गए, तुम्हें पता ही नहीं कि उसका हक क्या है। और तुम्हारी तो सारी जिंदगी फिर ना उसके एहसान तले है ना, बाकी चीजों सारी छोड़ दो, कोई सब छोड़ दें, ये मेरे सर पे छत है, मेरे जो है ना आंखें सलामत हैं, कान सलामत हैं, जेहन काम करता है, सब चीजें छोड़ दें, सिर्फ अगर एक सिर्फ चीज पे फोकस करें, जिंदगी। आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो सब खत्म, मुझे मेरी बला से कुछ छत है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, हवा है, ऑक्सीजन है या नहीं, मुझे क्या? तो जिंदगी दी उसने, ओहो, तुम उसको ही भूल गए, तुम उसके ऊपर ही बातें करते हो, उसकी चीजों का ना शुक्री करते हो, उसकी कदर नहीं पहचानते। तुम्हारा तो वजूद, तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस वजह से है कि किसी ने तुम्हें एग्जिस्टेंस दी, तुम खुद थोड़ी पैदा हो गए हो, खुद ही थोड़ी तुम आ गए यहाँ पे। हम तो अगर हमसे कोई, अगर हमारी फितरत सलीम है, अगर हम वाकई कोई वाकई इंसान है, कभी भी शैतान नहीं बने, तो ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ एहसान करता है ना तो हम उसको याद रखते हैं और कहते हैं, नहीं, इसने बड़ा एहसान किया मेरे साथ, ठीक है, जो भी है, लेकिन इसका एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। जो हल जजाउल एहसान ही इल्ल एहसान, अल्लाह तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? यानी जो आपके साथ एहसान करता है ना, आपका खुद ब खुद दिल होता है कि अब मैं ना कुछ भी नहीं इसके लिए कर सकता हूं, तो इसके आगे हम्बल रहूं, आजी के साथ रहूं, क्योंकि इसने मेरे बड़ा बड़ा एहसान किया। मसलन आप कहते हैं, मेरे बुरे हालात में फलां बहुत काम आई थी, फलानी वक्त में मुझे नौकरी चाहिए थी, उसने मुझे नौकरी दिलाई थी, फलां वक्त में वीजा दिलाया था, फलां वक्त में हमें यहाँ बुलाया था, हमारे लिए ग्रीन कार्ड के लिए भाग दौड़ की थी। जो भी किसी का एहसान होता है, सलीमुल फितरत इंसान एहसान को याद रखता है और अपने मोहसिन के सामने कभी सर नहीं उठाता। पहले जमाने की बातें हैं कि उस वक्त नौकर भी जो होते थे ना, वो भी कहते थे, हमने इस घर का नमक खाया हुआ है, हम नमक हरामी नहीं कर सकते, है ना। तो यानी इस चीज की लाज रखना, इस चीज को सोचना, समझना कि किसी का मेरे ऊपर एहसान है, ये इंसान की फितरत में है ये चीज। तो जब हम छोटी छोटी बातों के ऊपर दूसरे का एहसान याद रखते हैं, तो वो जिसने इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया कि सब एहसानात उसके अंडर हैं, सब नेमतें उसके नीचे हैं, सबसे बड़ी नेमत हमें जिंदगी की दी। वैसे कोई डूब रहा हो, उसको कोई बचा ले तो उसको तमगा देते कि यार देखो ये ट्रेन के आगे गिरा हुआ था, उसको देखो फलां सिटीजन उसने उठाया ट्रैक से और उसने अपनी देखो यहाँ पे किया, वो फलाना स्विमिंग पूल में डूब रहा था, देखो जी फलां ने जाके उसकी जान बचाई, कि वो सब उसको शाबाश करेंगे। वो तो बंदा तो इतना हो जाता है कि ये तो इसने देखो मुझे ये यहाँ पे मेरी जान बचाई है, तो कितना उसके एहसानमंदी करता है। कोई किसी को ऑर्गन दे देता है, कोई किसी को खून दे देता है, कोई किसी को उसके ऊपर कितना करते, सोचते नहीं जिसने जिंदगी दी, जिसने जिंदगी दी। और सिर्फ दी नहीं, आगे आ रहा है फिर और भी बातें आ रही हैं, और क्या क्या दिया, और फिर वो जिंदगी को चला भी रहा है और उसकी इज्जत से चल भी रही है कि आज अगर मैं बैठी हुई जिंदा यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, तो इसलिए कि उसने, उसका एहसान है उस रब्बे करीम का, कि उसने ये सांसें दे दी कि चल रही है जिंदगी की डोर। हाँ, तो उसका कितना बड़ा एहसान है। तो सारी जिंदगी भी, हर सांस के साथ भी, ये जिंदगी तूने दी भी है, ये लम्हा ये लम्हा ये लम्हा, इसका एहसान देने में मैं अपना सर सजदे में रख दूं और कभी ना उठाऊं, तब भी उसकी एहसान मंदी, उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिंदगी तो फिर एक नेमत है ना, उसके अलावा फिर बेशुमार नेमतें होंगी उसके अलावा। लेकिन बेसिक नेमत तुम्हें, तुम सारी चीजें छोड़ दो, अल्लाह ने वो बेसिक चीज लेकर आ गया, सब चीजें छोड़ दो, तुम बताओ कि जिंदगी तुम्हें किसने दी, तुम उसको ही भूलते हो। अल्लाह अकबर, इसके बाद इंसान का सर उठना चाहिए। इसीलिए जो इंसान नेमतों को पहचान लेता है ना कि ये अल्लाह ने मुझे दी है, इसीलिए शुक्रगुजारी इतनी इंपॉर्टेंट है, कि जो ये एहसास कर लेना कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया हुआ, वो उतना ही अल्लाह के आगे झुका होगा। और जो जितना भूला होगा ना, ये भी मुझे मिला है तो मिला है, मिला हुआ है वो, कोई किसी वो नहीं पता कि किसने दिया, बस मिला हुआ है, ये है तो ये बस है, किसने दिया है उसका नहीं कोई, वो इंसान उतना ही ज्यादा अल्लाह से दूर होता है, क्योंकि उसको कदर नहीं होती। जो पहचान लेता है वो फिर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करता है और झुकता है। फिर फरमाया सिर्फ ये ही नहीं, सुम्मा युमीत को, वो ही फौत करेगा तुम्हें, तुम पे मौत तारी करेगा, यानी जब तक उसने चाहा है तुम्हें जिंदगी देगा, जब वो चाहेगा तुम पे मौत तारी कर। तो पहले ही वाली जो चीज थी, फर्स्ट स्टेज क्या था, मौत, उसके बाद जिंदगी, उसके बाद मौत, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो जिंदा करेगा तुम्हें। पहली मौत क्या थी, जब हम ऊपर थे आलमे अरवा में, समझ लें एक डीप फ्रीजर में रखी हुई है सारी रूहें, वैसे ही मैं एक मिसाल आपको बता रही हूँ, तो वो स्टोरेज के अंदर है, तो फिर उसका जिसका टाइम आ रहा है वो जा रही है दुनिया में फाहिया को, फिर उसको जब माँ के पेट में इतने दिन हो जाते हैं तो फिर वो रूह माँ के पेट में डाली जाती है, तो ये जिंदगी देना, सो मैं उम्मीद को, फिर वो मौत तारी कर देगा तुम पे। ये जो मौत दुनिया में आनी है ये यहाँ पे मुराद है, ठीक है। सुम्मा युहयीकुम, फिर उसके बाद जिंदा करेगा, फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला जिंदा करके खड़ा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर उसकी तरफ तुम तरजीउन नहीं है, अच्छा भी एडवांस वाले स्टूडेंट इस बात को समझे कि ये कौन सा सीगा है तुरजाउन का, दूसरे वाले लोग ना घबराएं प्लीज, सिर्फ जो एडवांस वाले लोग हैं वो बताएं तुरजाउन क्या है। मजहूल है ना, मजहूल मतलब क्या, तुम लौटाए जाओगे, तरजीउन नहीं है तुम लौटोगे, तरजीउन होता तो क्या था, तुम लौटोगे, तुरजाउन है तुम लौटाए जाओगे, जब तुम लौटाए जाओगे इसका मतलब तुम लौटोगे होता तो मतलब था कि तुम वापस चल पड़ते, लेकिन जब तुम लौटाए जाओगे तो मतलब क्या हुआ, कोई है लौटाने वाला, किसी और के हाथ में है तुम्हें लौटाना, पहले भी आया वो मौत देगा तुमको, वो जिंदगी देगा तुमको, फिर वो जिंदा करेगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर, इन सारे स्टेजेस में आप जरा मुझे बताएंगी कि कहाँ पे उसका अपना बस है कि वो जिंदगी दे रहा है, अच्छा वो मौत अपने ऊपर लेकर आ रहा है, फिर वो उठ रहा है, फिर वो चल पड़ा है। इन सारे में कहीं है इंसान का अपना कोई बस है, इंसान की अपनी कोई से है, कोई इससे परमिशन ली जाती है, पूछा जाता है, इजाजत ली जाती है, मौत का फरिश्ता इजाजत लेके आता है, कहीं पे भी बस नहीं है। इस सब में किसका बस है, अल्लाह का। जब चाहा जिंदगी दी, जब चाहा मौत दी, जब चाहा दोबारा जिंदा करेगा और अपनी तरफ लौटा लेगा, ठीक है। तो जब इस सारी चीजें में, जिंदगी में भी मौत में भी उसी का बस है, उसी की से है, तो ये जो बीच का छोटा सा वक्फा जिसमें तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हें जिंदगी दी यानी पैदा किया दुनिया, मौत दी, तो जिंदगी और मौत के दरमियान जो ये जो हम 4 दिन काट रहे हैं यहाँ पे, यही मुश्किल है हमारे लिए अल्लाह की बात माननी, सारी थ्रू आउट तो उसकी चलनी है, तो क्यों ना इस छोटे से वक्फे में भी उसको ही, उसकी बात मान के चला जाए, उसकी सुनी जाए, इसमें हम अपनी करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या पता चलता है, एक और बात बड़ी सोचने की बात है, यहाँ हमें बता दिया गया हमारी हकीकत कि तुम कितने बेबस हो, इतने बड़े बनते हो ना, मैं तो ये, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मानूं, तो तुम हो क्या? तुम तो वो हो जिसको जिंदगी देने के लिए भी कोई और जात है, वो खुद अपने आप को जिंदा भी नहीं कर सकता था। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि एड़ियां रगड़ते रहते हैं बिस्तरों पे, अस्पतालों में मौत नहीं आती, घर वाले भी कहते हैं ला इसके ऊपर अब रहम कर, मौत नहीं आ रही होती। कई बिल्डिंगों से छलांगे मार देते हैं, मौत नहीं आती। जब उसने देनी है तभी आएगी, फिर वो जब चाहेगा तो दोबारा जिंदा करेगा। पड़े रहे बरजख के अंदर पड़े में, अब क्या है इंसान की अपनी बस नहीं है कि वो उठ खड़ा हो वहां से, जब अल्लाह चाहेगा तो उठाएगा। तो फिर अगर सारी चीजों में इंसान की मर्जी नहीं चल रही, वो बेबस है, तो इस जिंदगी में भी जो 60-70 साल की जितनी जिंदगी है, इसमें अल्लाह ने थोड़ा सा तुम्हें इख्तियार दे दिया, उसके अंदर भी अपनी अना छोड़ो, अपनी जात की बड़ाई छोड़ो, अपनी मैं छोड़ो, और अपने आप को बेबस कर दो अल्लाह के आगे कि अल्लाह जो तू कहता है वैसे ही चलना। अल्लाह मैं बे इख्तियार हूं, मैं बेबस हूं, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह वो ही होगा जो तू करेगा, जो तू चाहेगा, जो तेरा फैसला होगा। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें इस आयत के अंदर है ना, कितना कुछ ये आयत हमें समझा देती है। अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यही बस इंसान की कहानी है, ये पूरी कहानी उसकी जिंदगी क्या है, कहां था पहले मुर्दा था रूह था और कहां अल्लाह के पास पहुंच रहा। ये शॉर्ट एक आयत में पूरी कहानी आ गई, सारे मरहले आ गए, बरजख भी और कयामत भी और उससे पहले आलमे अरवाह भी। हमें कितना लंबा ये सब कुछ लगता है, ये तो कितनी मुख्तसर सी कहानी इस छोटी सी जिंदगी में। फिर क्या अल्लाह की नहीं मानोगे? और इस सारे में आपको पता है सारे फेजेस में सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा? देखिए अमवातन, पता नहीं कब से, जब से आदम अलैहि सलाम से पहले दुनिया में आने से पहले उस वक्त रूहें तखलीक हुई थी, हजारों साल गुजर गए, इसका मतलब हजारों साल हम रूह की शक्ल में थे वहां। फिर उसने जिंदगी दी है, दुनिया की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी कितनी है, बहुत कर ले, बहुत किसी की मैक्सिमम ले जाए तो 100 साल होगी। तुम मैं उम्मीद तुम फिर मौत देगा तुमको। अच्छा वो मौत क्या है? वो मौत जो कब्र की जिंदगी है, जो बरजख है, बरजख में इंसान जब तक कयामत नहीं आती उस वक्त तक पड़ा रहेगा। पता नहीं कयामत कब आती है, 1,000 साल बाद आती है, 2,000, 10,000 साल बाद आती है, पता नहीं। उसके बाद तुम यही कुम फिर कयामत का दिन, उस दिन अल्लाह ताला जिंदा करेगा। वो दिन कितना लंबा है, 50,000 साल के बराबर दिन। तो ये सारे मरहले बहुत लंबे हैं, सबसे छोटा मरहला कौन सा? ये जो ये जिंदगी, इसमें ही हम संभल नहीं पाते, इसमें ही हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फिर उलमा कहते हैं कि इसमें एक इशारा है कि ये जिंदगी फिर कैसे गुजारनी है। ये जिंदगी में भी अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, इस जिंदगी में भी फिर अल्लाह की मान के चलो, इस जिंदगी को इतना टेम्प्ररी और छोटा समझो, जैसे कि सारे मरहलों को देखोगे सब लंबे लंबे नजर आएंगे। कयामत का दिन में भी कहीं पुल सिरात है, कहीं मीजान है, कहीं किताबें हाथों में दी जा रही हैं, कहीं उससे पहले इंतजार का मरहला है कि अल्लाह ताला कब आके फैसले करे, कितना कुछ है। तो ये सब लंबे मरहले, ये इतना छोटा टाइम है, सब में उनमें अल्लाह का इख्तियार है। इसमें अल्लाह ने तुम्हें छोटी सी चॉइस दे दी, तुम उसी में आपे से बाहर होते जा रहे हो, क्यों? सुम्मा इलैहि तुरजाऊं। अच्छा फिर आप देखें, हाँ जी, अब एडवांस वालों के लिए एक और सवाल। नॉर्मल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, उसमें होना था सुम्मा तुरजाऊं ना इलैहि, फिर तुम लौटाए जाओगे तरफ उसकी, इलैहि एंड में आना चाहिए था, लेकिन इलैहि पहले आ गया, तुरजाऊं बाद में आया। ये जब पहले आ जाता है इस तरह, तो इसमें क्या माना बनता है? मैंने आपको बहुत दफा बताया था ये, जब लास्ट कोर्स में एंड हो रहा था, लहू से आपको बताया था अगर किसी को याद हो। यानी ये माने को फिर एक्सक्लूसिव कर देता है कि यानी फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, यानी किसी और तरफ नहीं, फिर जॉबों की तरफ नहीं लौटाए जाओगे, घरों की तरफ नहीं लौटाए जाओगे, अपने मुल्कों की तरफ नहीं लौटाए जाओगे, फिर सिर्फ अल्लाह की तरफ, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, सिर्फ उसकी तरफ लौटाए जाओगे। هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا لکم لیے تمہارے، ما فی الارض جمیع جو کچھ بھی زمین پہ ہے. آپ دیکھیں وہ کیف تکفرون ہے نا، وہ آگے بھی سمجھنے آ رہا ہے وہی بات کہ دیکھو تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو، کیسے اس کو بھول سکتے ہو، کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو. اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے، اور وہی تو ہے والذی ہوا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، ہوا آنے سے کیا ہوا، جیسے ہم الخاسرون آنے سے ہوا، وہی تو ہے. اب یہ ہوا نکال کے صرف اللہ جی سے بھی بات شروع کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہوا کہہ دیا نا تو یعنی وہی تو اللہ ہے جس نے یہ پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں. پیدا کیا، ایک تو پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا تمہارے لیے کیا. جیسے کوئی بہت بہت زبردست کوئی تحفے لے کر آئے، یہ سب آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سجا دی، آسمان سجا دیا، فرمایا یہ سب تمہارے لیے، ایون آسمان کے ستاروں کو کہا تمہارے لیے زینت ہیں. اور شیر چیتے تو نہیں آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے کتنا خوبصورت آسمان لگ رہا آج، وہ تو نہیں یہ باتیں کرتے، تمہارے لیے، تمہارے ایستھیٹک سینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو خلق لکم، تو اب آپ جب باہر جائیں تو دیکھیں کہ کیا کیا ہے زمین پہ. آپ سوچیں لکم، لکم کو سرکل کریں، آپ سرکل کریں یہاں پہ لکم کو پینسل سے، اور یہ سوچیں تمہارے لیے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے، یعنی ابھی انسان دنیا میں آیا بھی نہیں تھا تب اللہ نے اس کے لیے سب کچھ یہ بنا کے رکھ لیا. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا صرف ضرورتیں نہیں، صرف ضرورتیں نہیں، ضرورتیں تو ویسے بھی پوری ہو سکتی، آپ پتے پہن لیتے ضرورت تو آپ کی پوری ہو ہی جانی تھی، کپڑوں کی کیا ضرورت، اور پھر وہ بھی رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگے ڈیزائن، رنگ برنگا مٹیریل، طرح طرح کی ہے نا. اور کھانوں کی ہم نے بات کی تھی، پھلوں کی ہم نے بات کی تھی، کھانا کیسا بھی ہم کھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ناز اٹھایا تمہارا، بہت کچھ تمہارے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ کو کیسی محبت ہوگی اس انسان سے کہ لکم، آپ دیکھیں تو صحیح جمیع کا لفظ آیا، صرف یہ بھی ہو سکتا تھا ما فی الارض جو بھی زمین میں، نہیں جمیع سارے کا سارا، سب کا سب کس کے لیے، تمہارے لیے. کہ لکم میں جو ہے نا، اچھا لکم کی ایک مطلب اس کا ہے، اس کو کہتے ہیں لام اباحہ، مطلب ہے کہ تمہارے یوز کے لیے، تمہارے لیے اجازت ہے اس کو استعمال کرنے کی. اور ایک ہے لام تعلیل، یہ دونوں لام اس نام کے، یہ نام ہے لام تعلیل، یعنی جسٹ فار یو، جیسے ہم کہتے ہیں نا صرف تمہاری خاطر میں نے یہ کام کیا، تو آپ کے اوپر کتنا بڑا ہو جاتا ہے نا کہ اچھا اس نے میرے لیے کیا، صرف تمہاری خاطر میں اتنی دور سے چل کے آئی ہوں، صرف تمہاری خاطر ہی میں نے یہ بنایا، تو آپ کتنے احسان مند ہوتے ہیں، کتنی اچھی ہے اس نے میرے لیے اتنا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری زمین ہی تمہارے لیے بچھا دی، دیکھو تو صحیح ذرا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، یعنی تم استعمال بھی کرو. اسی لیے وہ اب لوگ کہتے ہیں نا، لو یہ تو چیزیں جہاز اور یہ تو پہلے زمانے میں نہیں تھے، تو اب کیا ان کو استعمال کرنا اسلام میں جائز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سب کچھ تمہارے لیے انلیس کہ اللہ نے کسی چیز کو کھانے کو حرام کیا ہو. تو ایسے اب ہم سوچیں گے یہ سب ہمارے لیے کیسے ہیں، ہم تو ان کو کام میں بھی نہیں لاتے، ہم تو لمیٹڈ چیزوں کو کام میں لاتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ہماری نظر بہت لمیٹڈ ہے اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں، حالانکہ ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے لیے کام کر رہی ہے، انسان کو سرو کر رہی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی انسانوں کا ہی پرپس پورا ہو رہا ہے، हमारे लिमिटेड सोच की वजह से हम सोचते हैं जिस चीज से मेरे काम कारोबार को फायदा हो रहा है, मेरी सेहत को फायदा हो रहा है, मेरे जिस्म को फायदा हो रहा है, मेरे हुस्न में इजाफा हो या मुझे देख के अच्छी लगे, बस वही काम की चीजें हैं। बाकी जो मुझे देख के नहीं अच्छी लगती, ये सांप, इनका क्या काम है? इनको तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये दुनिया में ना होते तो तुम ये समझ ना सकते कि जहन्नुम में जो सांप होंगे वो कैसे होंगे। अगर ये बिच्छू ना होते तो तुम ये ना समझ सकते। अगर गर्मी ना होती तो तुम ना ये समझ पाते। अगर खूबसूरती ना होती तो तुम जन्नत की खूबसूरती कैसे जान सकते। नहीं, खूबसूरत चीजें तो होनी चाहिए, ये बेकार चीजें नहीं होनी चाहिए। कई दफा उन्हीं चीजों के जहर से भी दवाइयां बनती हैं, दवाएं बनती हैं। हाँ, और उनके क्या क्या पर्पज है हमें तो ये भी नहीं पता। हम अपने जीने से ताल्लुक रखते हैं, हमें क्या कोई चीज क्या हो क्या नहीं कर रही। हालांकि जब अल्लाह ताला ने फरमा दी हर चीज तुम्हारे लिए है ना, तुम्हें सर्व करने के लिए, तुम्हारे लिए बनाई है अल्लाह ने, तो सोचे फिर कि वो कोई एक खाना मेरे लिए बना देती है, वो कहीं दूर से चल के आ जाती है, आप उसका इतना रिगार्ड करते हैं कि मेरी खातिर इसने किया। और अल्लाह ताला कह रहा है मैं सारा कुछ ही तुम्हारे लिए बना दिया, जमिया तो दिल नहीं झुकता उसके आगे, फिर भी सब कुछ तुम्हारे लिए बना दे। अब इंडिविजुअली हमें सोचने की जरूरत है, मेरे लिए क्या क्या है। जब मैं दुनिया में नहीं आई थी, मेरे लिए पहले से सूरज चमक रहा था, जमीन पहले से रखी हुई थी, दरख्त, फूल, फल, पौधे, सब चीज पहले से थी, ये चरिंद परिंद जानवर पहले से थे, अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन का इंतजाम पहले से किया हुआ था, ग्रेविटी पहले से थी, यहाँ पे पानी पहले से था, ये झरने पहले से चल रहे थे। कि जब मैं दुनिया में आऊं तो ये मेरे लिए सब कुछ तैयार, सब कुछ पहले से तमाम किया हुआ था। फिर इस जमीन का बैलेंस रखने के लिए पहाड़ पहले से गाड़े हुए थे, फिर स्पीशीज का बैलेंस रखने के लिए एक बनाया तो दूसरा उसके साथ बैलेंस करने के लिए बनाया, समंदर में मछलियां मेरे लिए चल रही थी। मुझे तो कई चीजों का पता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया जमीया सब का सब। वो इंसान तो कितना नाशुक्र है, फिर भी अपने रब को ना पहचाना। जमिया के अंदर ना दुनिया की सब चीजें आ गई हैं, सब चीजें, चाहे वो सोना, चांदी, तेल, पानी, आग, हवा, सब चीजें आ गई। जिस रब ने इतना कुछ किया, तुम समझते ही नहीं उसको कुछ, उसने तो थोड़े से तुम्हें हुक्म दिए, तुम्हें तो वो एक-एक बात का, एक-एक सांस लेने की भी बात का हुक्म दे देता तो तुम्हें तब भी झुकना चाहिए। थोड़े से अहकामात उसने दिए, ये करो ये ना करना, वो भी ना पूरे हो सके, तो फिर क्या, कैसा ये इंसान ना शुक्र है, फिर तो फेलियर ही है ना ये इंसान। अपने आप को अलग करके सोचे, एक जात है जो आप वैसे दुनिया में ही देख रहे हैं, आप किसी के साथ बहुत अच्छा करें, बहुत उसको आपने स्ट्रीट से उठाया, वो होमलेस था, आपने उसको ले जाके नौकरी दिलाई, घर लिया, आपने उसको चाबी दी गाड़ी की, ये लो गाड़ी तुम्हारे लिए, घर फर्निश तुम्हारे लिए, ये नौकरी तुम्हारे लिए, आपने उसको ग्रोसरियां भर के दी उसके घर के अंदर, आपने उसके बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया, आपने उसको सिटीजनशिप लेके दी, आपने वो बेचारा कहाँ पड़ा हुआ था, आपने उसको क्या क्या उसके बाद वो आपको ही आंखें निकालना शुरू हो जाए, आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाए जाके लोगों में, तो आप क्या कहेंगे, खुद सोचेंगे। तो छोटी छोटी चीजें, और तुम तो सोचो तुम्हें तो जिंदगी दे दी, तुम तो सोचो तुम्हारे लिए सारा कुछ ही रख दिया जमीन पे। देखिए ये जो ये जितना कुछ हम खाते हैं, ये तो आप दूसरे चरिंद परिंद और जानवरों की गिजा देखें, वो कितनी यानी एक मोनोटनस सी है, सिर्फ वो ही चीज खाते हैं और तो कुछ है नहीं। हमारे लिए कितना कुछ है, सब्जियों, फलों, गोश्त और हर चीज से लेके आप देखें, मछली और क्या क्या चीजें, जो वैरायटी हमारे लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। और अल्लाह ने किसी और को नहीं कहा कि मैंने शेरों के लिए ये दुनिया पैदा की, मैंने ये दुनिया पैदा किया है इनके लिए, जो हाथी हैं इनके लिए पैदा किया, मैंने फलां के लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए भी किया लेकिन जानवरों के लिए भी किया, नहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्हारे लिए लकुम। अब क्या इसके बाद सर उठाने की गुंजाइश है? इतनी बातों को इंसान समझ जाए तो उसकी हिदायत के लिए काफी है, किधर भटकता फिरता। सुम मस्तवा इला समा, फिर उसने तवज्जो की आसमान की तरफ। अगर आगे आगे इस्तवा के आगे आला आता ना तो फिर था बुलंद हुआ, लेकिन यहां पे आया इस्तवा इला, तो मुतवज्जे हुआ। तो इसका मतलब है कि ये तो इंसान की पैदाइश से पहले की बातें हैं, कि ये सारा कुछ तैयार किया जा रहा है उसके आने के लिए। बेबी आना होता है दुनिया में, कैसे माँ बाप चीजें खरीद के रखते हैं ना, कि ये उसका कमरा सजा दिया, ये किया। अल्लाह ताला ने इंसान के आने से पहले सारी कायनात ही सजा के रख दी, कि फिर अल्लाह मुतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उनको सात आसमान हमवार कर दिया। देखो कैसे तुम्हारे ऊपर छत लगा दी आसमान की, उसके ऊपर तारे टांग दिया। और आपको पता है ये तो ये अभी पहला आसमान है, ये आसमाने दुनिया है, क्योंकि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आसमाने दुनिया को जीनत दी सितारों से। तो ये जितने सितारों की बातें हम पढ़ते हैं, मिलियन लाइट ईयर्स दूर फलाने दूर, वो फलाने जगह पे एक वो सितारा इतनी दूर है, बेचारे अभी तक तो इंसान फाइंड आउट ही कर रहे हैं कि कितनी दूर दूर सितारे हैं। जाना तो दूर की बात, जा ही नहीं सकते, जाहिर है इंसान की तो जिंदगी इतनी नहीं है, इतने लाइट ईयर्स दूर कैसे वो ट्रेवल कर सकता है। ये तारे जो हैं ये आसमान है, दुनिया की जीनत है। तो सोचें सुभान अल्लाह, इसके ऊपर सात छह और आसमान है, ये पहला आसमान है अल्लाह ताला ने ये बना दिए। वो और फिर कैसे बनाए होंगे अल्लाह ने, फिर वो कैसे सातों आसमान होंगे, फिर अल्लाह ने कैसे ये किया। वह हुआ भी कुल्ली शहीन अलीम, इसका जवाब ये, वो हर चीज को खूब इल्म रखने वाला। वो कहते हो कैसे, ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा, वो सब जानता है, उसको इल्म है। सुभान अल्लाह, इसका जवाब है। तो वो चूंकि हर चीज का इल्म रखने वाला है, वो कर सकता है ये सब। फिर अब कहानी शुरू होती है इंसान की, अभी रूहें भी नहीं बनी थी, अभी इंसान का कोई वजूद नहीं था, मैं और आप तो कुछ थे ही नहीं, रूहों की फॉर्म में भी नहीं थे, तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं थे। बहुत पुरानी बात अल्लाह ताला बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, इज ना जो पुरानी बात करनी होती कि ओ पहले ये हुआ था, जब ऐसा हुआ था। वह इज कॉल रब्बू का, और जब कहा तेरे रब ने, ये अब देखें बहुत एंशंट टाइम की बात है। जब कहा तेरे रब ने लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं बनाने वाला हूं जमीन में खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक बात रखी कि मेरे फरिश्तों मैं जमीन के अंदर एक अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा का मतलब क्या होता है, जो पीछे रह जाए, पीछे आने वाला, जानशीन, सक्सेसर, सब्स्टिट्यूट को भी कहते हैं, नाइब को भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे इंसान किसका खलीफा है, बाज मुफस्सरीन ने कहा कि चूंकि दुनिया में पहले इंसान सॉरी जिन्नात रहते थे, तो जिन्नात के बाद अब इंसान आए हैं, तो वो खलीफा कहा गया। बाज कहते हैं कि नहीं, असल में खलीफा का ये माना होता है जब कोई बड़ा पोजीशन ऑफ पावर वाला किसी को कोई जिम्मेदारी दे और उसको कहे कि मेरा ये काम करो, तो उसको ये जिसको हुक्म दिया गया उसको खलीफा कहते हैं, ठीक है। नायब कह सकते हैं, इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह थे, कि यानी जमीन में अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए आए, इंप्लीमेंट करने के लिए अल्लाह के कवानीन को। और पूरी जिन से इंसानी जो है अल्लाह ताला उसको क्यों बना रहा है, मैं बना रहा हूं जमीन में खलीफा। ये इंसान का पहला ये नहीं बताया कि मैं इंसान बना रहा हूं जमीन में, खलीफा बना रहा हूं, यानी वो जमीन में मेरे अहकामात को नाफिज करेगा। इसका मतलब है कि मेरा और आपका दुनिया में मकसद क्या था आने, हमें बनाने का मकसद क्या था, ये फन करना नहीं था, इंजॉयमेंट नहीं था कि दुनिया में आए हुए इंजॉय करें, जिंदगी एक दफा मिली है इंजॉय नहीं करना, फन नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट बस, जरा सा फारिग हुए एंटरटेनमेंट शुरू हो गया, बस जिंदगी का मकसद एंटरटेनमेंट है। पहले मेहनत करो, काम करो, खूब अपना दिमाग खर्च करो, उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट, बस यही जिंदगी है। फिर उठो, फिर काम करो, फिर एंटरटेनमेंट, फिर उठो, फिर काम करो, फिर एंटरटेनमेंट, यही चलता रहता, जिंदगी गुजर जाती। इसके लिए नहीं पैदा किया, इसके लिए कि अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करो दुनिया के अंदर। तो अच्छा, अब जब फरिश्तों ने ये सुना उन्होंने आगे से कहा, कालू उन्होंने कहा, अतजालु फीहा मई युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, एला क्या तू बनाएगा इसमें किसमें, जमीन में, उसको मन जो युफसिदु फीहा जो फसाद करेगा इसमें, वो यस्फिकु दिमा और खून बहाएगा यानी कत्लो गारत करेगा फसाद करेगा। अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि फसाद का मतलब क्या है, यानी अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क, अल्लाह के अहकामात को तोड़ना, गुनाह, अभी बताया ना आपको। और यस्फिकु दिमा क्या है, खून खराबा, कत्लो गारत गिरी। तो ये उन्होंने कहा, उनको कैसे पता चल गया, वो भी तो इंसान बना ही नहीं है। सोचा करें आप भी ना, सोचें गौर और फिक्र की आदत डालें कि कैसे उनको पता चला, उनको कहां से कोई, उनको गैब का तो नहीं पता है। ये उनको यहां से पता चला, नंबर वन इसका रीजन, नंबर वन लिखें इसमें कि दुनिया में मैंने आपको बताया 2000 साल पहले से जिन्नात बसते थे और जिन्नात ने यहाँ पे खूब फिस्को फजूर किया, कत्लो गारत की, ये सब किया था। तो उन्होंने उनका देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये भी यही काम करेगा, ठीक है। नंबर टू लिखे, नंबर टू रीजन कि उनको कैसे पता चला, उनको ऐसे पता चला कि जब ये कहा गया है कि एक खलीफा, तो खलीफा से उन्होंने ये बात को अखज किया कि खलीफा तो वो है जो जमीन में इसलाह करेगा, अल्लाह के अहकामात को नाफिज करेगा, यहाँ पे यानी ऐसे काम करेगा जिनसे फसाद को खत्म करेगा, रिजॉल्व करेगा इश्यूज को। तो इसके अंदर तो फिर जाहिर है एक इख्तियार चाहिए होगा, पावर चाहिए होगी। जब इख्तियार आएगा उसके पास, जब उसके पास पावर आएगी, तो वो तो फिर इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करेगा, पावर को गलत भी इस्तेमाल करेगा। अरे वो हमारी तरह तो नहीं होगा कि भाई जो जो अल्लाह ने कहा वो करता गया, वो तो खलीफा है, वो तो जो उसके पास पावर होगी तभी तो वो रिजॉल्व करेगा ना इश्यूज को, तभी तो वो नाफिज करेगा। तो खलीफा वही होता है वाइस ज्यूरेंट, तो इसलाह करेगा दुनिया के अंदर। अब उन्होंने इससे अखज किया कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, यहाँ पे फसाद होगा, ये खून खराबा होगा। अब उनकी ये देखिए, उन्होंने भी एक सवाल किया, पीछे किसने सवाल किया था आज की आयतों में, पीछे किसने सवाल किया था अभी, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ये जो हमने आज बागुदा वाली पढ़ी है, इसके अंदर आयत नंबर 26 में आप देखें, अल्लदीना कफरू यकुलूना मादा अरादल्लाहु बिहादा मतलब। अच्छा उनसे अल्लाह नाराज है, लेकिन यहाँ पे फरिश्तों से अल्लाह नहीं नाराज हुआ कि तुम सवाल ये कैसा कर रहे हो और तुम क्या, इसलिए कि फरिश्ते जो हैं वो सवाल ऐसे नहीं कर रहे, अल्लाह क्यों तू कर रहा है ऐसे, जैसे अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे या अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, जैसे आज हमारे मुसलमानों में अल्लाह ने ये क्यों कह दिया, अल्लाह ने ये क्यों ऐसा किया, अल्लाह ने मेरे साथ क्यों ऐसा, एतराज की फॉर्म में बात करते हैं, वो सवाल नहीं होता, मेरे साथ क्यों अल्लाह ने ऐसा किया, मैं ही रह गया था, ये एतराज है। फरिश्तों ने एतराज नहीं किया, उन्होंने हिकमत जानने के लिए सवाल किया था। तो जब हिकमत जानने के लिए, यानी इंसान कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझा देंगे ये क्या है, ये क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक है, लेकिन जब ये कहेंगे ये क्या अल्लाह ने क्या दिया, तो ये गलत है। तो सवाल सवाल में भी फर्क होता है, कोई सवाल तनकीद करने के लिए, तो क्रिटिसाइज करने के लिए कि अल्लाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई सवाल है समझने के लिए। अब समझ आइए आपको कि कौन सा सवाल होता है जो सही होता है और कौन सा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सवाल नहीं होता, वो इतराज होता है। तो सवाल के भी एटिकेट्स हैं। अब आप देखें कि जब उन्होंने ये कहा, तो उनको एक तो ये बात समझनी थी, दूसरा उनको क्या फिक्र थी, उनको ये फिक्र थी कि अल्लाह की नाफरमानी होगी जमीन में। आपको पता है ये फरिश्ते अल्लाह की बहुत ताजीम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा, ये तो कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो अल्लाह से कोई सवाल करें, अल्लाह तू क्यों पैदा कर रहा है, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते अल्लाह से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ला युसअलु अम्मा यफअलु, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो जो चाहे करे, वो हुम युसअलून, वो सवाल किए जाते हैं, लोगों से सवाल किए जाएंगे, बाकी सारी मखलूक से अल्लाह जिससे चाहे पूछे कोई बात, क्यों तुमने ऐसा किया, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता, अल्लाह तूने क्यों ऐसा किया। ये तो आज इख्तियार दिया हुआ, तो जुबानें खुली नहीं है, जो मर्जी कोई बोलता जाता है, जो मर्जी को कहता जाता है, जिस दिन अल्लाह ने जुबानों को बांध दिया ना, इनको बंद कर दिया, फिर इंसान वो जो वहां देखेगा उससे उसको समझ आ जाएगी। फिर ये तो आज अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ तो ये सब बोल रहा, वरना उससे कोई नहीं पूछ सकता, किसी की मिजाल नहीं है उससे पूछने की, और ना ही किसी का हक क्या क्या उससे पूछे कुछ, क्यों किया तूने। और भाई तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने दी है, वो जो मर्जी करे, अब मेरा घर हो, मैं अपने घर में जो मर्जी करूं, अब आपके आगे कहें ये तुमने क्यों ऐसे किया हुआ, तो मैं कहूंगी आपका घर नहीं है, मेरा घर है, मैं अपने घर में जो मर्जी करूं, तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने जिंदगी दी, वो जो मर्जी करे। फआलुन लिमा युरीद, सूरह बुरूज में आता है ना, अल्लाह जो चाहे करे, ठीक है, ये जिंदगी उसकी है, तो वो हमें हमारे साथ जो भी करे, हमें क्या इख्तियार है। अपनी बेबसी देख ली ना, ना मौत हाथ में, ना जिंदगी हाथ में, ना कोई अंजाम हाथ में, तो क्या है हम। तो फरिश्ते जो पूछ रहे हैं तो वो ना इतराज कर रहे हैं, ना अल्लाह से क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे कि अल्लाह तुमने, वो कह रहे हैं अल्लाह हमें समझ नहीं आई कि इसमें हिकमत क्या है, और अगर तूने इबादत के लिए पैदा किया है, करना चाहता है, तो वह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, तो हम तो ऑलरेडी तेरी तस्बीह कर रहे हैं और तेरी तकदीस बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। आपको पता है ना, फरिश्ते तो हर वक्त जितने फरिश्ते जो काम भी कर रहे हैं ना, चाहे वो हवा के ऊपर मामूर है, चाहे बादलों पे मामूर है, चाहे रिस्क पे मामूर, वो सारा टाइम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, हाँ सारा टाइम, और उससे थकते नहीं है। तो वो कहते हैं हम तो तस्बीह अल्लाह तेरी ऑलरेडी बयान कर रहे हैं, और तकदीस भी तेरी पाकी भी, पाकी किससे कि तू हर ऐब से, हर शिर्क से, हर फ्लॉ से, हर वीकनेस से तू पाक है। तो ये जो तकदीस है वो नफी है, हर जो अल्लाह की शान के खिलाफ कोई भी सिफत है उसकी नफी है, और तस्बीह क्या है, उसमें अल्लाह की पाकी है, उसमें यानी असबात है, ठीक है, इतराफ है कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू बुलंद है, अल्लाह तू एक है, अकेला है, तू रजाक है, तू रहमान है, तू रहीम, तो ये तस्बीह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सुजूद में जो एक आपकी तस्बीह थी, शायद लोगों को इतना नहीं पता हो कि सुभान रब्बी अल आला या सुभान रब्बी अल अजीम की जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तस्बीह किया करते थे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, सुब्बू हर कुद्दूस अल्लाह है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, ठीक है। तो वो कहते हैं हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं अल्लाह, फिर मतलब इबादत के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है, और ये वैसे भी जब इसके पास इख्तियार होगा, तो जब किसी को इख्तियार मिल जाता है तो वो जरूर अपने इख्तियार का उल्टा इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों मुझे पता है जो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। अब फरिश्ते वो आर्ग्यूमेंट नहीं शुरू हो गया, अल्लाह तुझे कैसे पता है, हमें जो पता है, हम जो जानते हैं, अब वो एक शुरू कर दें अल्लाह ताला के साथ एक, नहीं, उसके बाद आप आगे देखेंगे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या उसके अंदर बातें थी जो उन्होंने फिर एतराफ किया। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला कोई उनसे मशवरा लेने के लिए नहीं उनको बता रहा, उनको इन्फॉर्म कर रहा है अल्लाह ताला कि मैं एक बनाने वाला, क्योंकि देखिए दुनिया में जो नज्मो नस्क चलेगा, मसलन जिंदगी मौत रिस्क, ये बादल पानी, ये सब चीज जमीन के जो चलेंगे, ये निजाम अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देते हैं, वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई उनसे इजाजत नहीं ले रहे, ना मशवरा नहीं ले रहे, तुम बताओ मैं करूं कि नहीं करूं, नहीं, अल्लाह को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों के मैं जानता हूं, वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। हमारी तो छोटी सी अकल है, अल्लाह को तो पता है बहुत सारी हिकमतें, लेकिन थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगी कि क्या चीज है जो उनको नहीं पता थी, वो नहीं जानते थे, अल्लाह को पता है। आप देखिए एक हदीस में आता है ना कि जब दिन के फरिश्ते, दिन होता है सुबह सादिक के वक्त, दिन के फरिश्ते आते हैं और असर को चले जाते हैं, और रात के फरिश्ते आ जाते हैं वो फजर के वक्त चले जाते हैं। यानी शिफ्ट बदलती है, एक सुबह फजर के वक्त और एक असर के वक्त। आने वाले जब आते हैं तब भी, और जब जाते हैं तब भी, सुबह की और असर की नमाज में लोगों को पाते हैं। यानी लोग फजर पढ़ रहे हैं या असर पढ़ रहे हैं, वो जाके अल्लाह ताला के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि जब तुम गए थे तो क्या कर रहे थे, वो अल्लाह के अल्लाह जानता है, और जब तुम आए तो किस हाल में छोड़ के आए। तो अल्लाह ताला इससे फरिश्तों को बताता है कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इसी चीज को देखने के लिए तो अल्लाह भेजता है कि जाओ देखो। फिर अल्लाह ताला जब अराफात में लोग होते हैं और अल्लाह ताला उनको देख के फरिश्तों पे फखर फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदों को, इनको ये फरिश्तों को तो नहीं पता था, फरिश्तों को तो नहीं ये पता कि इस इंसान जो है, जो अल्लाह इंसान बना रहा है, इसमें पैगंबर आएंगे, औलिया लाएंगे, सालेहीन आएंगे। हाँ, फरिश्तों को नहीं पता कि इसमें वो भी होंगे जो अल्लाह की खातिर जान की बाजी लगा देने वाले होंगे। फरिश्तों को नहीं पता कि वो होंगे जो बिन देखे ईमान लेकर आएंगे, सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार होंगे। फरिश्तों को नहीं पता कि इनमें अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने कहलाने वाले भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो रातों को उठ के अपने आंसुओं से मुसल्ले को भिगो दें, ऐसे भी होंगे जिनको गलियों में घसीटा जाएगा और उनकी जुबान पे क्या होगा, आहत आहत बस। ऐसे दीवाने भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो फजर से मगरिब तक मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, ना पानी का कतरा ना खाना, भूखे रहेंगे कि अल्लाह तेरी खातिर रोजा रख के। ऐसे भी होंगे जो अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला दबा देंगे, मेरी ख्वाहिश है नहीं वो नहीं, अल्लाह इसमें राजी होता है तो उसकी रजा होगी। ऐसे भी होंगे जो टेम्पटेशन से भरी हुई दुनिया में रहेंगे लेकिन उसमें रह के भी अल्लाह को नहीं भूलेंगे, उसकी याद को सीने से लगा के रखेंगे। ऐसे भी होंगे जो पाबंदियों में रह के, पाबंदियों में अपने आप को रखेंगे, इस पे रहने को तैयार हो जाएंगे, हालांकि वो चाहें तो कुछ भी कर लें, लेकिन वो खुद कि अल्लाह राजी हो जाए। ऐसे भी होंगे जो अल्लाह को खुश करने के लिए गम का घूंट सबर से पी जाएंगे। ऐसे भी होंगे जो गुस्से के मौके पे, इश्तियाल के मौके पे अपने आप को, बस अपना गुस्सा पी जाएंगे, गुस्से के घूंट को अपने आप को काबू में रखेंगे। ऐसे भी होंगे जो मजबूर और बेकस होंगे, जो मुसीबतों में हाथ उठाएंगे और अल्लाह को पुकारेंगे। ऐसे भी होंगे जो अपने गमों के दुखड़े अल्लाह को सुनाया करेंगे। ऐसे भी होंगे जो अपनी मर्जी छोड़ के अल्लाह की मर्जी को आगे रखेंगे। ऐसे भी होंगे जो अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के ताबे करेंगे। ऐसे भी होंगे जिनकी सारी जिंदगी का मकसद ये होगा कि अल्लाह ताला सिर्फ एक दफा कह दे, या हैया तो नफ्सुल मुतमाइना इरजी इला रब्बी की राधिया मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। वो जिएंगे ही इसलिए कि एक दफा ये सुन ले। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो सूली पे चढ़ेंगे तो बोलेंगे रब्बी इब्नी लिया इंदक बैतन फिल जन्नत, अल्लाह अपने पास जन्नत में मुझे घर दे देना। ऐसे भी होंगे जिंदा होंगे जिंदा, और उनका मुसला किया जाएगा, उनका एक एक उज्व काटा जाएगा, और फिर भी उनकी जुबान से सिर्फ अल्लाह ही का नाम लिख लेगा। ऐसे भी होंगे, फरिश्तों को क्या पता कि ऐसे भी दीवाने होंगे। ये सब फरिश्ते नहीं कर सकते। वो कहते ना, हम अल्लाह तेरी तस्बीह करते तो हैं, हम तेरी तकदीस बयान करते तो हैं, लेकिन ये लोग, ये इंसान वो होगा जो ख्वाहिशात और आरजू और टेम्पटेशंस की दुनिया में रहने वाला होगा, वो इस दुनिया में नहीं रहते। इंसान वो होगा जिसका नफ्स उसको वरगलाएगा, जिस पे जज्बात हावी होंगे, ख्वाहिशात हावी होंगी, उसको इख्तियार भी होगा जो चाहे करे, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, चाहे तो अल्लाह का जिक्र करे, चाहे तो नंगा फिरे, इंसान के पास इख्तियार होगा? वो नहीं जानते कि कैसे इंसान होगा जो अल्लाह को देखा भी नहीं होगा, गैब की दुनिया कोई नहीं जानता, कभी नहीं देखी, फिर भी अल्लाह के हुक्मों को ऐसे मानेगा जैसे सामने अल्लाह को देखता है। उसके साथ जरूरियात चिपटी भी होंगी और उसके पास जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कई रास्ते होंगे, हराम के, हलाल के, वो फिर भी हलाल रास्ते को इख्तियार करेगा। ये सब चीजें फरिश्तों को कहाँ पता है? उनके साथ तो ये लगी ही नहीं हुई। उनको ना भूख लगती है, उनको नहीं पता भूख किस चीज का नाम है, रोजा क्या चीज होती है, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता औलाद की मोहब्बत क्या होती है, किसके पीछे इंसान क्या क्या आराम कर सकता है। उनको नहीं पता ये ख्वाहिशात कैसी होती हैं जो अंदर उठती हैं और फिर इंसान पे गलबा पा लेती। उनको क्या पता गुस्सा क्या चीज है, उनको क्या पता किसी की जुदाई क्या होती है, उसका गम क्या होता है, उनको क्या पता दुख क्या चीज होती है, वो नहीं जानते। और उनको क्या पता कि इख्तियार मिल जाना कितना बड़ा इम्तिहान होता है, वो नहीं जानते। वो अगर इबादत करते हैं तो इसलिए कि उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता, अगर फरमाबरदारी करते हैं तो इसलिए कि नाफरमानी उनको आती ही नहीं, जबकि इंसान ऐसा नहीं है, उसके पास सारा इख्तियार है, उसके पास ख्वाहिशात है। तो जब वो फिर इस तरह के हालात में रह के फिर भी अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, तभी तो अल्लाह को इतना महबूब हो जाता है, तभी तो अल्लाह ताला उसको इनाम में जन्नत देंगे। तो तूने वहां पे प्रूव किया है मुझे, जहां पे ये सब कुछ था। फरिश्तों की मुखालफत करने के लिए कोई नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं खड़ा हुआ जो उनको बरगला रहा है, कोई उनका नफ्स नहीं है, ना उनके पास कोई शैतान है, ना उनके कोई मुखालिफीन है, ना उनको कोई माहौल ऐसा मिला हुआ है जिसके अंदर। जब इंसान इन सब चीजों के अंदर रहकर फिर भी अल्लाह के आगे झुकता है, वो अल्लाह को इतना प्यारा लगता है। इसीलिए जो इंसान तस्बीह करता है वो फरिश्तों की तस्बीह से ज्यादा है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। चाहे तो जुबान को आप खामोश रखें, कोई नहीं आपको कहेगा आप तस्बीह क्यों नहीं कर रहे, आपको इख्तियार है अल्लाह की पाकी बयान करें या ना करें, आपको इख्तियार है अल्लाह का हुक्म माने या ना माने। फरिश्तों के साथ तो ऐसा नहीं, वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। और वाकई फिर अल्लाह ने दिखाता है ना फरिश्तों को, देखो मेरे बंदों को, देखो ये मेरे बंदे कैसे। सुभान अल्लाह, तो ऐसे बंदे बनना है कि अल्लाह फखर करे जी, ये अल्लाह कहे फरिश्तों देखो ये है मेरे वो बंदे, कि मैंने तुम्हें कहा था ना इन्नी आलम मा ला तालम, वो बंदे बन के दिखा। और अल्लाह में ऐसा बना दे कि हमारे अंदर ताकत नहीं है और हमारे साथ बहुत ही शैतान है। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون